ॐ शान्ति ॐ शान्ति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है कि बाप को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं और साथ साथ कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बाप की आंखों में समाए रहते हैं। बाबा ने कहा कि जो बच्चे हर्षित रहते हैं, बाप की सेवा में तत्पर रहते हैं, ईमानदार हैं, बाबा उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं और अपनी आंखों में समा के रखते हैं। कई बच्चे बाबा को कहते रहते हैं, बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं। बाबा ने कहा वो बच्चे जो बिल्कुल इसको प्रैक्टिकल में करते हैं, वैसे तो सभी कहते हैं तुम्ही से बैठो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से करूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में करते हैं वही बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो कैसे चलते चलते माया बच्चों पर वार कर लेती है। तो बाबा ने कहा बच्चे कभी भी माया से हार नहीं खानी है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम सतयुग में जाकर के किस तरह से ऊंच पद पाएंगे और बाप से वर्षा लेंगे। और साथ साथ बाबा ने वैराग्य वृत्ति को भी अपने जीवन में कैसे धारण करना है वो भी बाबा ने युक्ति बताई। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 9 अप्रैल 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, घर चलना है, कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। अब बाबा ने वैराग्य वृत्ति के लिए क्या बोला कि बच्ची अभी घर चलना है, मीठी बच्ची अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है, कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। आज का प्रश्न है बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं, कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाए हुए हैं। सभी आप बच्चे बाबा की आंखों में समाए हुए तो है ना। तो बाबा कहते हैं बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं और कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाए हुए हैं। उत्तर है जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते उन्हें देख देख। बाबा कभी क्या बोलते देख कर, आज बाबा ने कहा उन्हें देख देख, जैसे ना जिनसे प्यार होता है उसको बार बार देखते रहते हैं, तो बाबा का बच्चों से कितना प्यार है। तो बाबा कहते हैं उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाप से बोलूं, बाबा से ही बात करूं, होता है ना, एक होता बोलना, एक है प्रैक्टिकल में कि बाबा से बोलूं, बाबा से बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाए रहते हैं। बाबा कहते मेरे सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय। भक्ति में कहते, गीता में कहते जो मुझे अच्छी तरह रियल प्रिय जानता वही मुझे प्रिय, कहने ज्ञानी तो आत्मा प्रिय। और आज बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं, ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। बाबा का होता था जो सर्विसेबल बच्चे होते थे ना, अगर उनका पत्र दादियां में सुनाती थी कि दादियां क्या करती थी, रोज का रोज बाबा को पत्र लिखते थे। उस समय तो पत्र बाय पोस्ट आते थे और जैसे लिखते थे रोज का रोज पत्र बाबा को पहुंचता था। अब कभी किसी कारण से बाबा के पास पत्र नहीं पहुंचता तो बाबा याद करते थे कि फलानी बच्ची का अभी तक पत्र नहीं आया, तो बाबा भी उन्हें याद करते और बच्चे भी बाबा को याद करते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने बैठे भी हैं, वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, बाप भी है, पढ़ाने वाला भी है, सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करते हैं, कहाँ भी जाओ घूमो फिरते, फिर बाबा ने कहा कहीं भी जाओ घूमते फिरते चलते फिरते काम करते। आज बाबा ने कहा विलायत जाओ, बाबा के टाइम पर उस समय कई कई बच्चे थे जो फॉरेन में रहते थे। आपको पता रहे कि बाबा के टाइम पर ही जयंती बहन की लौकिक माँ और कोई और भी जैसे दादा राम थे, जैसे उससे ना आए ना कविता बहन गोविंद भाई के निमित्त भोग के लिए आए थे, तो उनके लौकिक पिताजी दादा राम ये विदेश में रहते थे, तो इसलिए बाबा कहते कहीं भी जाओ विलायत में जाओ कहीं भी जाओ। बाबा कहते हैं पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते, कहाँ भी जाओ घूमते फिरते, विलायत में जाते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अभी तो बहुत जाते आते रहते हैं, लेकिन बाबा ने दूसरा रास्ता क्या बताया, कहीं भी जाओ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए, एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा शरीर लेते हैं, किसका पार्ट 100 वर्ष का है, किसका 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का, कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते। कई कई दुनिया में भी ऐसा होते, कई ऐसा होता है पैदा होते हैं बस पैदा होते ही उसके थोड़े टाइम के बाद मर जाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं कोई तो जन्म लेते ही खत्म हो जाते हैं, कोई तो जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो मरते हैं जीते हैं मरते हैं, जल्दी मरे जल्दी फिर जाके दूसरा जन्म लेते, लेकिन सतयुग में क्या है जो पूरी आयु जब तक पूरी नहीं होती है तब तक दूसरा जन्म नहीं लेते, अपने टाइम पर ही शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते ही इसको गर्भ जेल कहा जाता है, सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता। यहाँ तो गर्भ जेल में भी कितने कष्ट भोगते रहते हैं क्योंकि कई जन्मों का हिसाब किताब है ना, तो बाबा कहते सतयुग को गर्भ जेल नहीं होता है, वहां तो विकर्म होते ही नहीं, तो इसको गर्भ जेल नहीं कहा जाता। बाप सब बातें समझाते हैं, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इस शरीर के आत्मा भी सुनती है, सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है। श्री बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो कभी कोई ब्रह्मा बाबा कहते देखो सबसे पहले मैं सुनता हूँ, क्योंकि शिव बाबा ने जो सुना है सबसे पहले ब्रह्मा के कान सुनेंगे ना। जब यहाँ भी ट्रांसलेशन करते ना, ट्रांसलेशन के अंदर 1-2 सेकंड का बहुत अंतर पड़ता है, जैसे यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन फिर इंग्लिश तो दूसरी लैंग्वेज में होता है, 2-2 सेकंड का फर्क पड़ता है। ऐसे बाबा को भी नशा रहता था कि शिव बाबा जो भी बोलते हैं पहले मैं सुनता हूँ। तो बाबा कहते सुनाने वाला बेहद का बाप पेट इस शरीर द्वारा समझाते, इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है, जिसका अपना शरीर नहीं है, वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, ऐसे नाम रूप लेने से भी रहित है। बाबा पुनर्जन्म रहित, उनका नाम केवल एक शिव है, चाहे कितने भी नाम रख लो, लेकिन नाम रूप लेने से वो रहित है। उनको कहा जाता है सदा शिव, सदैव के लिए शिव ही है। सदा है, सदा का नाम शिव है, सदैव के लिए शिव ही है। जिस्म का कोई का नाम नहीं पड़ता, जिसमें प्रवेश करते हैं तो भी उसके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारा नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। जैसे लौकिक में कोई सन्यास करता है तो उनके नाम बदल जाते हैं, तो बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने, आपको पता है, इतने अच्छे अच्छे नाम वतन से आए थे, बाबा ने सबके नाम रखे। और बाबा आज बता रहे हैं, बाबा ने नाम तो रखे, बाबा को निश्चय था ये जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, परंतु फिर भी छोड़ के चले गए। तो बाबा कहते हैं, बाप ने कहा तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। पता है ना दादियों के नाम क्या थे, पुराने नाम क्या थे और अभी के नाम क्या है। तो ऐसे नाम थे, तो आज जो बाबा ने नाम दिए हुए हैं दादियों के, ऐसे नाम दुनिया में कोई रख ही नहीं सकता है, इतने ज्ञान युक्त, इतनी विशेषताओं से संपन्न है। तो दादियों के नाम तो किस प्रकार से रखे बाबा ने, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने ड्रामा अनुसार जिनके नाम दिए वह भी गायब हो गए। बाप ने समझा है हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकति नहीं देंगे, परंतु दे दिया फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। बाद में फिर कई बच्चे आए बाबा को, कहते थे बाबा हमें नाम दो। बाबा कहते पक्का निश्चय है, ऐसा नहीं नाम दे दें फिर चले जाएंगे। तो बाबा ने फिर बाद में नाम देना बंद कर दिया था। तो बाबा ने कहा परंतु दे दिया फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी जब घर लौट जाते हैं तो फिर उनका पुराना नाम चलता है, जब सन्यास लिया तो नाम बदल जाता है। तो बाबा कहते सन्यासी भी फिर घर लौट जाते हैं तो फिर उनका पुराना नाम ही चलता है। घर में तो लौटते हैं ना, ऐसे नहीं सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं आते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, ये तो बाहरी सन्यास किया ना, बुद्धि से तो किया नहीं है। तो बाबा कहते हैं कई सन्यासियों को मित्र संबंधी आदि सब याद आते रहते हैं, मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है, कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है अभी वापिस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना। अब सुबह मीन्स बाबा के टाइम पर क्या होता था, हम मई जून के महीने में यहाँ थे बाबा के पास, तो बाबा अमृत वेले योग के बाद फिर बाबा क्या करते थे, जहाँ दादी के ईश्वरदारी का ऑफिस है, बाबा का ऑफिस है, उसके बाहर खड़े होकर के बाबा पूरा राउंड लगाते थे। पहले जाते थे निव्याभ के ऑफिस के बाहर जो सीढ़ियां हैं वहां पर खड़े होते थे, फिर वहां बाबा दृष्टि देते थे, फिर उसके बाद जाते थे जो हमारा ऑफिस है उसके बाद थल्ले पे खड़े होते थे, फिर गेट के पास जाते थे, फिर गेट के बाहर जाते थे, फिर बाबा आकर के कभी कभी सबसे बैठ करके रू रुहान करते थे, फिर बाबा उसमें भी ज्ञान की बातें बताते थे। फिर मुरली क्लास के बाद भी बाबा क्या करते थे, जो दादी का सिटिंग रूम है बड़ी दादी का, उसमें बाबा बैठते थे और मुरली के बाद में आपस में बहुत चिट चैट करते थे। तो बाबा वो बता रहे हैं, बाबा कहते हैं सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवे। किस बात का सुख होता, बाबा से मिलने का और बच्चों को देख देख करके आंखों में बच्चे समाए हुए, क्यों देख देख मन में सुख भावत क्यों? बाबा कहते हैं आंखों में बच्चे समाए हुए हैं, आत्माएं नूर है ना, बाबा भी बच्चों को देख देख खुश होता है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं, हमारी टीचर बहने आई हुई हैं, यहाँ भी बैठी हैं, तो बाबा कहते देखो सेंटर भी संभालती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं। टीचर बहने हाथ तो खड़ा करो, देखो कितनी सारी नीचे मीटिंग में आई हैं, ताली बजाओ इन सब के लिए, बाबा इनको कितना प्यार करते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो बाबा कहते हैं फिर कोई तो बहुत अच्छे सेंटर संभालते हैं और कोई ब्राह्मण बन फिर बेकार में चले जाते हैं, तो वो ना फरमांबरदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विस एबल बच्चों को देख देख हर्षित होते। बाबा के सामने उस समय सारे महारथी थे, क्योंकि आपको पता हो कि 1966 में जब पहली प्रदर्शनी म्यूजियम के सामने लगाई गई थी, उस समय बाबा ने क्या किया था, सब महारथियों को बुलाया हुआ था। तो अमृत वेले योग के बाद बाबा महारथियों के सामने खड़े होते थे, तो बाबा कितने सर्विसेबल बच्चों को देख करके बाबा कितना खुश होते वो बाबा बता रहे हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं ये तो कुल कलंकित निकला, कोई कोई सर्विसेबल निकला, कोई ऐसा निकला जो बाप का नाम खराब कर दिया। बेहद का बाप कहते हैं ये तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। बेकार में गया तो फुल कुल कलंकित, नाम रूप में फंस गए, बुद्धि इधर उधर जाती है, तो बाबा कहते उसको क्या कहेंगे, सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल हो जाते, पहले नाम रूप में फंसते हैं फिर बुद्धि एकदम चली जाती है, सेमी से फिर फाइनल हो जाते। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। बच्चे कितने होशियार है, ये नहीं कहेंगे कि हमारे से गलती है, कहेंगे माया ने धोखा दिया। अरे माया क्यों देती है धोखा, खुद गलती करते हैं। फिर बाबा को लिखते हैं माया ने धोखा दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो ये भी तो एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। शुरू शुरू में कई ऐसे थे, पहले तो नशा होता है ना, तो ब्लड निकाल करके पत्र लिखे, फिर बाबा तो जानते थे इनकी स्थिति क्या है, ऐसे पत्र लिखने वाले भी माया के चक्कर में आके चले गए। बाप कहते काम कटारे चलाए तो भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, वह आज है नहीं। बाप कहते हैं ओहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो, इतने बड़े बड़े पहलवान को ले गई। तो बाबा को कहना पड़ता है ओहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिखकर देते हैं तुम उनको भी खा जाती हो, उनको भी खा गई हो। फिर बाबा माया को बता रहे तुम ऐसे काम करती हो, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को खा ली है, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं तो उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है, आधा कलप बाप की समर्थि का वर्षा मिलता है, आधा कलप फिर माया वह समर्थि गवा देती है। ये है भारत की बात, देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, अब क्या स्मृति रहेगी, एक है सेवा करने के लिए, दूसरा क्या स्मृति रहेगी, अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तुम तो वंडर खाएंगे। हम जिस घराने के थे अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रहे, क्या आएगा स्मृति में, हम ही तो इन्हीं के घराने के थे और ये भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी पढ़ रही है। आगे जो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, पहले भक्ति में जिधर गए माथा ही टेकते रहे, और अभी क्या समझती रहती कि हम ही इनके घराने के हैं। अभी ज्ञान है, हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। कितनी अच्छी बात, कोई छोटी छोटी बात को लेकर के मूड ऑफ कर लेते हैं, मुंह बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, तो बाबा को ये अच्छा ही नहीं लगता था। बाबा के सामने कोई भी आता था ना, बाबा मेरे को ये हो गया ये हो गया, बाबा देख करके मुस्कुरा देते थे। बाबा कहते बाप के सामने बैठे हैं, बाबा इतना ऊंच बनाते हैं और बाबा के सामने ऐसा मुंह बना के आते हैं। तो बाबा को क्या हमेशा कहते थे, कुछ भी हो जाए अपना चेहरा सदा हर्षित रखो। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाए, यहाँ के जो संस्कार भरेंगे वह फिर हमारे साथ जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कैसे बने, कहाँ गए, कैसे ऊंच पद पाया। बाबा कहते कोई नहीं जानता है, समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटस, रावण है अनराइटस, हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है, क्यों कई बार कहेंगे ना असत्य बोलते हो, कहेंगे आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं। बाबा कहते ज्ञान के लिए राइट क्या रॉन्ग क्या उसके लिए बाबा बता रहे, इसलिए बाबा कहते ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं, तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्माओं को देते फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, वहां आत्माओं की लेन देन होती नहीं। यहाँ कलयुग के अंदर जो लेन देन है वो पाप आत्माओं से है, लेकिन बाबा कहते सच्चे में तो आत्माओं की लेन देन होती नहीं, अपना ही भाग्य बना के जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो लेन देन होती नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है, देवताएं पदम पति कैसे बने ये किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था क्योंकि उसकी निशानियां हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता कि उन्होंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो अगले जन्म में उनको राज्य मिलता है। वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालत होते ही नहीं, उनको कहा जाता है सुख नाम। 5000 वर्ष की तो बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती रहती हैं। बाबा कहते कितनी युक्तियां बाबा बताते हैं पावन बनने के लिए, तो बाबा कहते इतनी युक्तियां बताते हैं तो बच्चों को ध्यान भी तो देना चाहिए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते, यहां से गए हुए हैं, किन्हीं कारणों से दूसरे दूसरे देशों में, जब अपने भारत देश में आते हैं, अपने घर जाना हो तो उनको लगता हम जा रहे, बहुत खुशी होती है कि हम जा रहे हैं अभी अपने घर। तो बाबा कहते जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है कौन सा? शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। अब जिनका पार्ट ही लास्ट में हो, पूरा कलप वो शांति धाम में रहते हैं, बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। और फिर बाबा अपने लिए भी बोल देते हैं, और आत्माओं की तो बात है, अभी भी कई आत्माएं आती रहती, लेकिन बाबा कहते बाबा का भी बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है कौन सा? हीरो और हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी भी कोई में हो ना सके। कौन सा? हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही विश्व के मालिक बनते। दुनिया में कितना किसी को समझाओ, तुम्हारे जैसा नशा जो है बाबा कहते किसी को हो नहीं सकता। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। कितनी बड़ी नशा, और किसी की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं और कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलो, तुम्ही से बात करो, तुम्ही से खाओ, तो उनको ये नशा रहता है। कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलो, तुम्ही से बात करो, फिर तुम्ही संग खाओ, और आगे तुम्ही संग खेलो, और तुम्ही संग चलो। सब है, सब हर काम में बाबा के साथ। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख हर्षित होता हूँ। बाबा कहते मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता, और ऐसे बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको देख देख के बाबा कितना खुश होते हैं। तो आप सब सर्विसेबल बैठे हो ना, तो बाबा भी आपको देखकर कितना खुश हो रहे हैं। हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते। अब बाबा क्या कहते, हम भी 5000 वर्ष के बाद आए, क्योंकि बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जा रहे हैं। और बच्चे क्या कहते, हम भी 5000 वर्ष के बाद बाबा से मिल रहे हैं। क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जल कर भस्म हो गए हैं, अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक रखना है। कितनी अच्छी बात, एक बाबा को ही याद करना है और सब बातों से डिटैच होना है, एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी तो था, भक्ति में क्या कहा था, कहते ना तुम आएंगे तो हम तुम पे वार ही जाएंगे। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा भी तो कहना था ना कि आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपके ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, गाते भी हैं ऊंच से ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंच से ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो अब मैं तुमको देता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है, जब उनसे पूछो रावण कर रो शुरू से है, वो चला आता है। रावण कैसे हो सकता है सतयुग के अंदर? कहते रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण की कब, रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शाद माना करते। आगे तो पहले छोटा सा रावण बनाते थे, अभी तो रावण इतना बड़ा बड़ा बनाते जाते, हर साल उसकी हाइट बढ़ाते जा, उसमें इतने बड़े बड़े फटाके डालते हैं, इतने फटाके डालते जैसे कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा करते, इसलिए बाबा कहते जैसे कोई शाद माना करते हैं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं, बहुत विस्तृत आदि को भी बुलाते हैं। जब रावण जलाते हैं ना तो बाहर से भी बुलाते हैं और वीआईपीस को भी बुलाते रहते हैं, जैसे कि सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते कि रावण को कब से बनाते हैं, ये भी नहीं पता कि कब बनाया, कब जलाया, कब से जलाते रहेंगे और कब तक उसको जलाते रहेंगे, कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम समझ नहीं सकते कि रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता, आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे। बाबा कहते वो रावण, बाहर वाले रावण को तो जलाते हो लेकिन अंदर के रावण को जलाना है। बाबा कहते फिर कब तक इसको जलाते रहेंगे, आखिर भी रावण को कब तक जलाते रहेंगे। तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है फिर इनका राज्य नहीं होगा। बाप कहते हैं ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता है वह सब ड्रामा में नोंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता। तो जब ये पॉइंट आई ना तो एक दो बच्चों ने कहा कि बाबा ने कहा है कि हम पूरे कल्प में कितने वर्ष, कितने घंटे, कितने मास निकालने बैठे, तो उसका तो इतनी गिनती आजकल तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेते हैं। उस समय वो हाथ से करते रहे, जब बाबा के पास आए तो बाबा तो किसी को एक चीज पर ठहरने नहीं देते। बाबा ने कहा बताओ कितना टाइम तुमने वेस्ट किया है। बाबा को याद किया, इतने वर्ष, इतने साल, इतने दिन, इतने महीने, इतने घंटे, इतने सेकंड, इससे तो तुम बाबा को याद करता तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते। बाबा ने कहा ये तो बाबा अप्रोक्सीमेट बताते हैं, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात को लेकर के अपना टाइम उसमें वेस्ट करते रहो। तो बाबा किसी को किसी भी बात पे खड़े नहीं होने देते थे। बाबा कहते थे पुरुषार्थ करो। तो बाबा एक तरफ तो मैं बताया कि तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास सारी नॉलेज है, ऐसा नहीं कि तुम बैठे रहो उसी को सोचते रहो। तो बाबा कहते हैं तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये तो पता है ना, पूरे कल्प में हमारा ही तो पार्ट है, पूरे कल्प में तो हम सारे 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते ये तो आपको पता ही है ना, ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं, बाप कहती हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे ही तो बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है कहाँ पर, कहाँ होती है पावन दुनिया, कहाँ है, सतयुग में ना। लेकिन बाबा ने कहा शांति धाम और सतयुग, शांति धाम भी तो पावन है ना। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। तो पावन दुनिया कितनी होगी, दो, शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो। अब बाबा ने दो बातें कही, एक तो जब बातचीत करते हैं बाबा से प्यार है तो बाबा बाबा कहते, ज्ञान सुनाते हुए भी हमेशा कहो कि बाबा ने हमको ये बताया, बाबा कहते हैं, तो उनको सुनाने से खुद भी बाबा याद रहेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले ये है बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आ जाते। बाबा कहेंगे बाबा से क्या मिलता है, वर्षा मिलता है तो खुशी होगी ना, जैसे बच्चे को रहता है कि ये मेरा बाप है, बहुत बड़ा अमीर है, तो उसको खुशी रहती है मुझे ये मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। भगवान और ईश्वर कहते ना, उसका एक्सपीरियंस क्या है, एकदम ऐसा सीरियस, जैसे डल होते हैं ना, तो बस बड़े दुखी मन से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो, क्या बोलना है, बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये उनका रथ है, इनके द्वारा ही कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूँ, इस बैज में ही सारा ज्ञान भरा हुआ। आजकल जैसे बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बैज बनवाए थे, और बैज किस लिए बनवाए थे कि खुद भी देखो और दूसरों को समझाओ। तो क्या होता है, कई बाहर वाले देखते ना, कहते ये बैज हमको दे दो, अरे बैज तो ले लेगा, उसको पता ही नहीं है इस बैज के अंदर क्या क्या राज समाया हुआ है, वो बाबा और बाबा के बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है, पिछाड़ी में तुमको याद यही रहेगा, शांति धाम और सुख धाम, दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, ये भी जानते हैं, फिर नंबर वार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी बोधि क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं, पहले था एक धर्म, उससे कितने निकले। बाबा कहते फाउंडेशन एक, फिर धीरे धीरे ताल तालियां निकलती रही, पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं, लड़ते तो सब हैं, क्यों लड़ते हैं, क्योंकि सब निधन के बन गए हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। नशा, बाबा से हमको वर्षा मिलता है, हमारा राज्य कोई छीन न सके। बाप सूर्य का वर्षा देते हैं जो कोई छीन न सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना, किस बात में निश्चय हो कि बाबा हमको ऐसा वर्षा देते हैं कोई भी नहीं छीन सकता, इसी निश्चय में अखंड अचल और अडोल रहना है। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना, जो लीडर होता है उसके सामने, पहले तो उसके सामने आता है, वो फिर अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बताता है। तो बाबा जिनको भी सेवा पर रखते हैं, छोटी छोटी बातें आती है, लेकिन उन बातों को वो पार कर लेते हैं। पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना, बीमारियां आदि सब, फिर दूसरी बात राजयुक्त बाबा बता रहे हैं, बीमारियां आदि सब के लिए, सबके लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां ज्यादा आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं। अब बाबा ने राज बता दिया, ये बीमारियां आदि सब आएंगी क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब, अगर कोई आ भी जाती है, ज्यादा आ जाती, डरो नहीं, इसमें और भी अचल अडोल रहना है। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है, ये सब पिछाड़ी की हैं, फिर होंगी ही नहीं। अब पूरे कल्प के अंदर कई जन्मों का हिसाब किताब है, वो यहाँ ही चुक तो करना है, किसी के पास बीमारी के रूप में, किसके पास भिन्न भिन्न रूप से आती है। तो बाबा कहते डरना नहीं है, ये सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी ही नहीं, अभी सब उथल खाएंगे, बूढ़ों को भी माया जवान बना देते। अब फिर देखो क्या हाल है, ये भी बीमारी है, कहाँ इतना बुरा, कहाँ एकदम अच्छा व्यक्ति, कहाँ कैसे कैसे संकल्प आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी, मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होते, पहले तो बूढ़े होते थे, जाकर के वानप्रस्थ ले लेते थे और वहां पर वानप्रस्थ आश्रम में फीमेल्स नहीं होती, तो आजकल तो सब होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो बाबा कहते वहां फीमेल्स नहीं होती, सन्यासी भी जंगल में चले जाते थे, वहां भी फीमेल्स नहीं होती हैं। जब शुरू में सन्यास करते थे जंगलों में जाते थे तो अकेले ही जाते थे, फीमेल्स तो होती नहीं थी। अभी तो चारों ही तरफ क्या, जंगल तो छोड़ दिए, अभी तो शहरों में आके बस गए, फीमेल्स भी हैं, सब होती हैं। वहां तो फीमेल्स होती नहीं, कोई की तरफ देखते ही नहीं, भिक्षा ली और चले गए। उस समय क्या करते थे, देखते भी नहीं थे, जो मिला वो लिया और चले गए। आगे ये तो बिल्कुल स्त्री के तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी, भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई भाई देखो, बाबा ने इतना अच्छा युक्ति बता दी कि अपनी दृष्टि को पावरफुल बनाने के लिए सबको क्या देखना है, भाई भाई देखो। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई 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 देखो, शरीर का नाम भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है, ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो ना, बाबा को कहेंगे बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाबा कहते तुम्हारे मुख में, हमेशा कहते थे तुम्हारे में मुख में, तुम्हारे मुख में गुलाब, तो बाबा कहते बनो ना, बनना ही है। तो बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो, फिर क्या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए बाबा कहते बनो, फिर क्या करना है, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे ही, लेकिन कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है, देवाना आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता था ना, कई जन्मों का हिसाब किताब है, ज्ञान के आने के बाद कई बिजनेस में नुकसान हो जाता था, तो वो क्या कच्चे होते थे, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है, समझते हम ज्ञान में है इसलिए नुकसान हो गया। बाबा कहते तो वैसे भी अज्ञान में मारते रहते हैं, उसमें किसमें कौन सी बात थी जो दिवाला मारा। तो बाबा कहते हैं देवाला आदि तो ऐसे भी मारते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तो दिवाला मारा, ये तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने, कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, फिर क्या होता है माया आती तो क्या करते हैं, औरों को समझा बनते, फिर देवाला मारनते, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, औरों को समझाते, उनको बाबा का बनाते, कई कई ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, बच्चे सेवा की उनको बाबा का पक्का वारिस बना दिया, खुद वारिस बनते बनते दिवाला निकाल दिया और बाप को फारकती दे के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझा बनती, फिर दिवाला मारनती। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले ही मुझे बहुत प्रिय, गीता में कहा ना ज्ञानी तो योगी तो आत्मा प्रिय, तो बाबा क्या कह रहे हैं मेरी सर्विस करने वाले ही मुझे बहुत प्रिय, तो सर्विस भी वही करेगा जो ज्ञानी और योगी तो होगा, तो सर्विस तो वही कर सकता है ना, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को मैं याद करता रहता। बाबा को भी याद रहती है ऐसे ऐसे बच्चे क्या क्या सेवा कर रहे हैं, फिर उनको साकाश भी देते हैं, बाबा उनको मदद भी करते हैं, ऐसे बच्चों को मैं याद करता रहता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समृद्धि का वर्षा लेना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने। पूरे कल्प में हर्षित रहें तो बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारी आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी चुकतू करना है। जब कहते हैं पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, दादी हमेशा कहती थी पाप आत्माओं से भी लेन देन नहीं करनी है। और दूसरी बात है, कई बार धोखे में आकर के भी आपस में पैसे की लेन देन करते हैं। जब पैसे की लेन देन करते उसको कहेगी बताना नहीं, तुम किसी को नहीं बताना। देने वाला भी कहेगा नहीं बताना, लेने वाला भी कहेगा नहीं बताना। और ले लेते हैं उस समय नहीं बताते, फिर जब आपस में लड़ते हैं धोखा खाते हैं फिर आएंगे, इसने मेरा इतना पैसा लिया, इसने इतना लिया। अरे जब दिया था तब तो बताया नहीं, जब लिया तब तो बताया नहीं, अब आकर के बताएंगे। कहेंगे नहीं अब हमको लेके दो। अरे हम क्यों लेके देंगे, तुम जानो, तुम्हारा हिसाब किताब जाने। तो ब्राह्मण जीवन के अंदर बाबा कहते किसी भी बातों में लेन देन में नहीं जाओ, चाहे बातों के लेन देन में चाहे पैसे के लेन देन में। ये सारा पुरुषार्थ को एकदम ढीला कर देता है। दादी इस बात में सबको पक्का कराती थी तो बाबा भी पक्का कराते थे। बाहर की तो बात छोड़ो, लेकिन अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए बाबा का यज्ञ है, बाबा का घर है, वहां से जितना करेंगे भविष्य के लिए जमा रहेगा। आपसी लेन देन पर बड़ा ध्यान रखना है, इस बात पे सबको ध्यान देना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सदा हर्षित रहने के संस्कार यही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन है ये बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। और आज का अव्यक्त इशारा, आज 9 तारीख है। ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। अभी दो और दिन भी नीचे की मीटिंग चलनी है, 9 तारीख 10 तारीख, फिर 11 को वैसा भी कुछ जाएंगे, कुछ के सेवा के कार्यक्रम है, इस प्रकार से चलेंगे। तो अभी हमारे बीच में जस्टिस ईश्वरिया जी आए, आप तो कुछ तो जानते हैं, आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे, सब आपको देखेंगे। बाबा के विशेष रतन, इतना बड़ी पोस्ट होते हुए भी बाबा के निर्माण चित बच्चे और बाबा के लाडले सदा सेवा में अथक रहते हैं, परिवार सहित ज्ञान में है और बाबा के हर कार्य के लिए, सेवा के लिए सदा दौड़ते ही रहते हैं और सबके लिए एक एग्जाम्पल है। आपको देख करके बाहर वाले लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। बाबा ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और आंखों में समा लेता है और बहुत खुश भी होते हैं। इसलिए एक बार फिर जोर से ताली बजाओ। नीचे आएंगे, कभी भी नीचे आएंगे कहेंगे नहीं, बाबा के घर में आके जरूर रहना है। चारों धाम की यात्रा करने के लिए चाहे एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन बाबा से बच्चों से मिलने के लिए हमेशा आप आते रहते हैं, स्वागत है। बाबा तो आपको बहुत प्यार से कर ही रहे हैं स्वागत। ओम शांति। अभी हम सभी